अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम 10वां 12। यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, पहला ही लफ्ज़ है वालमो, और इल्म हासिल करो। इल्म की शान यहाँ से पता चलेगी कि जब हम इल्म हासिल करते हैं तो हम अल्लाह की मर्जी को जानते हैं। फिर इस सूरत अनफाल का वो सिलसिला चल रहा है कि जहाँ पीछे से नबी सल्लम के हिजरत करने की बातें थी, यहाँ बताया जा रहा है कि जहनी हिजरत से जिस्मानी हिजरत तक। हिजरत दिल से शुरू होती है, फिर जिस्म पे जाके पूरी होती है। इस पूरे पारे में आपको तौबा का लफ्ज़ बहुत दिखेगा, और आगे सूरत तौबा भी आ रही है। फिर सियासी तकवा क्या होता है, इज्तमाई तकवा क्या होता है, आज के दौर में हम मुहाजिर बन के जिए या अंसार बने, ये सब कुछ हम इंशाल्लाह इसमें देखेंगे। फिर इसमें आपको फिरौन की तौबा का भी जिक्र मिलेगा। हम इसको उसी सोच के साथ पढ़ते जाते हैं क्योंकि ग़ज़वा बदर ही का किस्सा कंटिन्यू हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और यहाँ सवाल को नोट कर लीजिए, सूरत के पहले सवाल को, यसअलूनक अनिल अनफाल। वो सवाल करते हैं कि माले गनीमत का क्या किया जाए। 40 आयात अभी तक हम पढ़ चुके हैं, अब उसके बाद उस सवाल का जवाब है कि वालमु अन्नमा गनिमतु मिन शयइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल। और तुम्हें मालूम हो कि जो माले गनीमत तुमने हासिल किया है, इसका पांचवा हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है। अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और उस चीज पर जो फैसले के रोज यानी दोनों फौजों के मिल जाने के दिन हमने अपने बंदे पर नाजिल की थी यानी बदर का दिन, तो ये हिस्सा बखुशी अदा करो, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि मुस्लिम स्टेट एक वेलफेयर स्टेट होती है। माल सिर्फ कमाने वाले का नहीं होता बल्कि दूसरे भी इसमें शरीक हैं। दुश्मन से जो माल गनीमत मिलता है उसकी बांट हमें बताती है कि मुसलमान उस माल को कितने खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और हर फील्ड में मनी लगेगी। आज हम जब वेस्टर्न कंट्रीज के सोशल सेटअप को देखते हैं और सोशल हेल्प मिलती है तो हम बहुत इंप्रेस होते हैं, लेकिन यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि इस्लाम ने इस चीज को शुरू में रखा था। इसके बाद गजवे बदर ही की तरफ मौजू चलता है। दुनिया वहुम बिलुद्वतिल कुस्वा। याद करो वक्त जबकि तुम वादी के उस जानिब थे और वो दूसरी जानिब पड़ाव डाले हुए थे, और काफिला तुमसे नीचे साहिल की तरफ था। अगर कहीं पहले से तुम्हारे और उनके दरमियान मुकाबले की करारदाद हो चुकी होती तो तुम जरूर इस मौके पर पहलू तही कर जाते, लेकिन जो कुछ पेश आया वो इसलिए था कि जिस बात का फैसला अल्लाह कर चुका इसे सबूर में ले आए, ताकि जिसे हलाक होना है दलील रोशन के साथ हलाक हो, और जिसे जिंदा रहना है वो दलील रोशन के साथ जिंदा रहे। यकीनन अल्लाह ताला खूब सुनने और जानने वाला है। ग़ज़वे बदर कोई प्लान जंग नहीं थी, यह हमारे लिए एक लेसन है। प्लानिंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन टू मच प्लानिंग कामों के रास्ते में रुकावट बनती है। बस दफा कई काम सिर्फ फाइलों की नजर हो जाता है, कई साल तक अभी उसकी अप्रूवल, अभी उसकी, अभी उस ऑफिस में जाएगी, अब उसको पकड़े, अब उधर पड़ो, और नतीजा होता है कि काम करने का वक्त गुजर जाता है। कभी कभी गो विद द फ्लो की तरह भी चलना पड़ता है। कुछ प्लानिंग करें और काम शुरू कर दें। जब हम बहुत ज्यादा सोचों में पड़ जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, हम किस तरह से चलेंगे, ये काम कैसे होगा, तो फिर बहुत दफा इंसान की हिम्मत टूट जाती है। बेखतर कूद पड़ना, अल्लाह के दीन के लिए नियत कीजिए, इरादे कीजिए, और उस काम को करने के लिए बस तैयार हो जाए। बाकी ना तो आप प्लानिंग करके जीतेंगे ना बगैर प्लानिंग के जीतेंगे। जीत आपकी तब होगी जब वन तुम अलाउन इन कुन तुम मोमिनून। तो यहाँ यही सबक देकर ग़ज़वे बदर की कुछ हल्कियां बताएंगे। फिर इधर एक छोटा सा सवाल आता है कि ग़ज़वे बदर एक प्लान जंग नहीं थी, फिर जंग क्यों हुई और इस्लाम ने क्यों इस चैप्टर को क्लोज ही ना कर दिया? तो याद रखिए कि ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जब तक दुनिया में जुल्म और बर्बरियत रहेगी जंगें होंगी। इस्लाम से पहले मार धाड़ लूट मार का इतना बुरा हाल था कि लोग साल के सिर्फ 4 महीने मेहनत करते थे, कमाते थे, और बाकी वो 4 महीने कौन से होते थे, जो हुरमत के, उसमें उनको यकीन होता था कि हमारा जान और माल बची हुई है, बाकी 8 महीने घरों में छुप के गुजारते थे। ऐसे दौर में इस्लाम ने इतने खूबसूरत तरीके से ये जंगों को प्लान करके चीजों को जनरलाइज किया कि आज आपको दिखता है कि दुनिया में जंग का उस तरह से नाम नहीं दिखता। तो इस्लाम ने सबसे पहले तबलीग की। आप लिख लीजिए आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा की वॉर टैक्टिक्स क्या होनी चाहिए। नंबर एक, आप खुद इस्लाम सीखें, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जिस दर्जे पे सीखा हुआ है उसमें एक्सीलेंसी ले लीजिए, सब सीखा हुआ है तो माशाल्लाह। दूसरे दर्जे पे तस्किया। फर्स्ट क्या है, तालीम, फिर तज़किया, फिर उसके बाद होती है तरबिया, ट्रेनिंग लेना। काम करने से पहले ट्रेनिंग लेना, अपने आप को कामयाब करवाना है। और जो लोग थोड़ा सीखा और बाकी काम खुद करने बैठ जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते जो बहुत ट्रेनिंग और प्लानिंग के साथ होने लगती है। फिर उसके बाद तज़किया होता है, तज़किया भी हो गया, तबलीग हो गई। इसी के साथ इंसान में खूबियाँ पैदा होती हैं, तकवा पैदा होता है, अल्लाह की मार्फत मिलती है, फिर इंसान रुहबान बिल्लैली व फरसान बिन नहार बनता है। और जब मक्का के 13 सालों में सहाबा कराम इस तरह से ट्रेंड हो चुके थे, तो उसके बाद जंग की इजाजत हुई। आप सवाल कीजिए कि मक्का में क्यों नहीं इजाजत मिली जंग की? सहाबा की ट्रेनिंग नहीं हुई थी, टीम तैयार कोई नहीं थी, तो बगैर तैयारी या अधूरी तैयारी से काम में कूद पड़ना खुद को तबाह बर्बाद करना होता है। तो मक्का में इसलिए ना जंग हुई, क्या वर्ण वहां भी हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने अभी तक वो नहीं किया था। आज जंग कौन करेगा? पहले नोट कीजिए, जो फजर के लिए उठ के नहीं जाता वो दुश्मन के आने पे कैसे करेगा? आज ये जो हमने एक उल्टी गंगा बहा दी ना, कि कुछ लोग सिर्फ तबलीग करेंगे, कुछ जंगें लड़ेंगे और कुछ लोग जो है वो सियासत लड़ेंगे, ये रॉन्ग है। एक ही गिरोह चलता है, पूरी उम्मत मुस्लिमा मुस्लिम आर्मी होती है। आज अगर इस्लाम आएगा तो फौज के नाम पे फील्ड खत्म हो जाएगा। देर इज नो डिफरेंट थिंग फॉर आर्मी, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। वही लोग जो मस्जिदों मदरसों में कुरान पढ़ते हैं, वो ही वक्त पढ़ने पे स्टैंडिंग आर्मी के तौर पे खड़े होते हैं और वो फौजी बनते। क्यों? कुरान पढ़ा हुआ बंदा जिस तरह जाके जिहाद कर सकता है, वो दूसरा बंदा कैसे करेगा? कुरान पढ़े हुए जाके जिहाद में खड़े होते थे तो रातों को सूरह कहफ की तिलावत शुरू करते थे। आप सुन चुके हैं वाकया। आज का फौजी किसी भी मुल्क की ट्रेनिंग लेकर जाएगा, फौजी होगा, बहादुर होगा, ताकतवर होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा, लेकिन ताल्लुक बिल्ला नहीं होगा। जब तक हम अपनी मुस्लिम आर्मी को रोहबान बिल लैल व फरसान बिन नहार नहीं बनाएंगे, उनको जंग की इजाजत नहीं होगी। वजह क्या कि मक्का में अगर ये ट्रेनिंग ना हुई होती और मदीना में आती बदर लड़नी पड़ती, वो तो पहले ही हल्ले में नाकाम हो जाते। फिर आप देखिए मक्का से मदीना में तो पहली 3-4 जंगे, बदर से लेके उहद और उसके बाद गजवे अहजाब तक, ये दिफाई जंगें थी, डिफेंसिव। हमने कुछ नहीं किया, मुसलमानों ने पहल नहीं की, जस्ट डिफेंड देमसेल्फ। तो ये फितरत है। क्या आपके घर दुश्मन आ जाए आपको मारने तो आप चुप करके बैठे रहेंगे? आपके घर चोर आ जाए तो आप बैठेंगे नहीं, आप पुलिस को बुलाएंगे, आप 911 को कॉल करेंगे। तो लिहाजा शुरू में यही हुआ, जब थोड़ा सा जोर बढ़ गया, जब लोगों को समझ आ गई कि इस्लाम एक ताकत है और वो उनके आगे आंखें दिखाने लगे, तो अल्लाह के नबी ने फिर ऑफेंसिव फायर भी की, क्योंकि उसमें किसी जगह जुल्म हो रहा था, किसी जगह कुछ था। तो तरबियत से बात शुरू होगी। आज क्या है, मुसलमान कुछ और है और इस्लाम कुछ और है। आज वो दौर आ गया कि मुसलमान को 5 वक्त की नमाज नसीब नहीं, वो जिहाद कहाँ करेगा? जो फजर के नमाजी होते हैं ना, जो सुबह की सफे है नमाजों की, वक्त पढ़ने पे ये जंग की सफों में बदलेंगी। जो माएं आज अपने बच्चों को 5 वक्त का नमाजी बना रही हैं, वो आने वाले किसी भी मुतवक्को खतरे के वक्त में मुसलमानों की फौजें तैयार कर रही हैं। ये कोई डिफरेंट फील्ड नहीं है कि तलवारें उठाएं। माएं कलम पकड़ाती थी और वैंड पे जाके तलवार में ढलता था। इमाम बुखारी की जिंदगी पढ़ लें आप, जितने हमारे आइमा कराम है, दोनों चीजें साथ साथ चलती थी। बेहतरीन फौजी कुरान पढ़ा हुआ शख्स होगा। और अगर नमाज में लिल्लाहियत नहीं है तो जंग में लिल्लाहियत कहां आएगी? वहां तो ये आपस में लड़ खड़ के आ जाएंगे, ये तो अपने अपने एक दूसरे की गर्दनें काटेंगे। आप देखिए इतने जियाले किस्म के लोग थे मुस्लिम फौज में, कि आप देखिए कि हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत उमर और हजरत अली, अगर इनका तरबिया ना हुआ था, एक इशारे पे ये रुक जाते थे, स्टॉप, खामोश, कोई नहीं लड़ा। अगर इनकी तरबियत ना हुई होती, ये गर्दनें पकड़ के एक दूसरे की काटते। हुदैबिया के मौके पे अल्लाह के नबी ने कहा रोक जो आगे नहीं जाना, स्टॉप स्टॉप हो गए। तो ये ग्रोह तैयार करना इस वक्त का, जो मुझे लगता है ये पूरी सदी, ये भी जो एक चल रही है, इसे अगली एक आधी सदी का जिहाद क्या है, हम अपनी नस्लों के दिल में इस्लाम की मोहब्बत डालें, नबी की मोहब्बत डालें और उनके दिलों में वो जज्बे डालें कि वक्त पड़ने पे वो फिर खुद ब खुद काम करेंगे। दुनिया से थोड़ा थोड़ा काटते जाए, दीन से जोड़ें, आखरत, मौत, ये तैयारियां होती हैं जंगों की। इसीलिए तो आप देखिए कि चंद लोग पूरी जंगों में मारे गए, सहाबा कराम। एक सहाबी आगे आप पीछे पढ़ चुके हैं सूरत निसा में वाकया, कि एक शख्स ने उनके सामने कलमा भी पढ़ दिया, उन्होंने फिर भी मार दिया। चले जवान थे, हजरत उसामा बिन ज़ैद, जवानी कह लीजिए या गलती हो गई कि इसने जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा, तो उस पर अल्लाह के नबी ने कितना सख्त एक्शन लिया कि कल क्या होगा अगर ये कलमा میں تمہارے سامنے قیامت کے دن پیش کر دیا گیا اور تم نے مار دیا. آج نہ جانے یقین کیجئے جنگوں میں کوئی پتہ نہیں کتنے مسلمان مارے جا رہے ہیں کفر کے نام پہ. ایک بھگدڑ مچی ہوئی اس وقت دنیا میں. جنگ کے لیے جانے والوں میں للہیت نہیں ہے, ان کے چہروں پہ سنت نہیں ہے, ان کے دلوں میں ایمان اور تقویٰ نہیں. مدد کیوں ہے؟ 60-70 سال سے آپ ایک زمین کے ٹکڑے پہ لڑ رہے ہیں, ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں آپ کر سکے. اللہ کے نبی کے دور کی جنگیں سب سے طویل جنگ 1 مہینہ رہی تھی. دیٹس اٹ, ختم, یا ادھر یا ادھر. تو یہ ساری پریپریشن کر لیجئے, پھر آپ دیکھیے گا کتنا فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو دلیل کی بات کی ہے, اب اس کے اگلی آیتوں میں تعداد کی بات ہو رہی ہے. کہ بعض لوگ تعداد کی بات کر لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو بدر کی فتح تعداد سے نہیں ہوئی تھی, اخلاقی وجہ سے تھی. وعلمو, علم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کو بتا دیا کہ دیکھو فتح سے کہیں نہ اخلاقی طور پہ پیچھے نہ چلے جانا, اسی لیے یہاں ہدایات ہے. آپ نے پیچھے سورت آل عمران میں غزوہ احد کی شکست کے بعد اسی طرح کا تربیتی نوٹ پڑا تھا جو یہاں بھی آ رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کو کس طرح سے جینا ہے. غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ اس جری کا ہم اللہ فی منامی کا کلیلا, اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اللہ تعالیٰ خود تم کو خود ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا, اور اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ کر کے دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے مقابلے میں جھگڑا شروع کر دیتے, لیکن اللہ نے ہی تم کو ان سے بچایا, یقیناً وہ سینوں کا حال جانتا ہے. اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا کر کے دکھایا اور ان کی تعداد میں تمہیں کم کر کے دکھایا, تاکہ جو بات ہونی تھی اللہ اسے ظہور میں لے آئے. آخر کار سارے معاملے اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یہاں بھی سمجھ لیجئے کہ اسلام تعداد پہ اعتبار نہیں کرتا. تعداد پہ اعتبار کرنا انسان کو غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ ہیڈ کاؤنٹ ہو گئی. مسجدوں کی تو بات چھوڑے, آپ قرآن پڑھنے آتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کتنے لوگ آ رہے ہیں, کتنے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے. یعنی ہم ہیڈ کاؤنٹ پہ اتنا اعتبار کرتے ہیں کہ زیادہ لوگ ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا کام ہو رہا ہے, اور ذرا تھوڑے لوگ آئیں زیادہ لوگ کام نہ کریں کہتے ہیں نہیں کوئی خرابی ہوگی تبھی تو ایسا ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ دیکھو وہاں تھوڑے تھے یا زیادہ تھے, آپ یہ پورا ایک منظر چلا تھا, کبھی وہ کافروں کو زیادہ دکھ رہے ہیں کبھی کم دکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے دل بندھا رہا تھا. میرا اور آپ کا اس میں کام کیا ہے؟ ہیڈ کاؤنٹ میں مت پڑے, تعداد کو نہ گنیں, کام کر کے دکھائیں. آپ اکیلی ہیں کام شروع کر دیں, پانچ لوگ ہیں کام شروع کر دیں, اپنا حصہ ڈال دیں اور اللہ کو یہ دکھا دیں کہ میں دلیل کے ساتھ جی رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں یہ سارا کچھ کیوں بتا دیا؟ تاکہ جب تم اللہ کے راستوں میں نکلو تو تم یہ تسلی کر لو کہ تم ٹھیک راستے پہ ہو. اس کے بعد فتح ہے یا شکست ہے تمہیں اس کی فکر نہیں ہے. مومن فتح کے لیے تو لڑتا بھی نہیں ہے, اس کا لڑنا تو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا ہوتا ہے. آپ اس رکوع کو ہائی لائٹ کر لیں جو آپ پڑھنے لگے ہیں کہ کس طرح سے اللہ کی مدد آتی ہے. فرمایا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو. پہلی چیز, امت مسلمہ ثابت قدم رہے. اس کو اکٹھا کر کے پھر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو. دوسری بات, ذکر اللہ, توقع ہے کہ تمہیں کامیابی ہوگی. پھر تیسری چیز, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. پھر آپس میں جھگڑو نہیں, ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو, یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اگلا حکم, اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے, اور جن کی روش ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں. یعنی شو آف نہ کرو, دکھاوا نہ کرو, شادیوں میں منگنیوں میں اس طرح سے اپنے جہیز اور ان چیزوں کا ڈسپلے نہ دو کہ جس کے اندر آپ کو کیا محسوس ہو. کہ اس طرح کا ڈسپلے جب آپ دیں گے کہ جس میں لوگوں کو یہ لگے کہ مسلمان اتنے شو پرست ہو گئے کہ ایک ایک شادی کو دوسروں کے لیے وجل بنا دیں گے, ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد کیسے کرے گا؟ اب اگر آپ دیکھیے کہ ان ساری آیتوں میں جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں, اگر ہم ان سب کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں تو ہر قسم کے جہاد میں کامیابی کا یہ راز ہے, چاہے وہ علمی جہاد ہے, عملی جہاد ہے, یا جنگوں کا جہاد ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں دوبارہ آپس کے اختلافات کی بات آ رہی ہے. صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جمع ہوتے تھے اور اسی میں الگ ہوتے تھے, اسی لیے وہ ایک تھے. بعد میں ادوار میں حب جاہ اور حب مال آ گئی, امت مسلمہ بٹ گئی. جب مسلمانوں میں عہدوں کی جنگ لگ جائے, مال میں کون, مجھے کیا بنا دیا, میرا نام کدھر رکھ دیا, مجھے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر کر دیا, تو وہاں مسلمان نقصان پاتے ہیں. امت مسلمہ عام امت نہیں ہے, वो मौलाना हाली के शायद अशार है ना, तो क्या सकवा में मगरिब पर न कर, खास है तरकीब में कौम हाशमी। ये हम बहुत खास है, हमारा खमीर कुछ और है, अल्लाह ने हमें खास मिट्टी से गूंदा है। हम कभी रंग नस्ल पर मुत्तहिद नहीं हो सकते, हम अरबी और अजमी पे मुत्तहिद नहीं हो सकते। उम्मत बनाने वाली चीज अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, इसलिए जब आपस में एक रहेंगे, सब्र करेंगे, इरादे करेंगे, अल्लाह की मदद होगी। और जब उम्मत मुस्लिम इन सब चीजों को छोड़ती है तो नुकसान वही होगा जो आज हो रहा है। आज हम अपनी एक एक शादी को अपने लिए जिहाद बना लेते हैं। ये जो मंजर आपने पढ़ा, ये ऐसे नहीं लगता किसी जंग का मंजर नहीं है, बल्कि ये किसी बारात का मंजर है। जब सज ढक के घर से निकलते हैं, उस वक्त हमें क्या लग रहा होता है, कोई आज हमसा हो तो आए। किसके पास इतना वक्त है कि वो अपने आप को इतना डिस्प्ले करे और अल्लाह का दीन इस तरह से पढ़ा हो। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारी मदद कर दे। देखिए, अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे ना तो साबित कदमी, और साबित कदमी आती तब है जब आपको अपने मकसद का यकीन होता है। अल्लाह को आपसे चाहिए। आप एक टेबल खरीदते हैं तो आप कौन सा खरीदते हैं जो स्टडी हो, स्ट्रांग हो, क्योंकि आपने उस पर कंप्यूटर रखना है। कच्चे टेबल पे मैं अपना कंप्यूटर तो कभी ना रखती, हर वक्त धड़का लगा रहता कि ये गिर ना जाए, ये टूट ना जाए। तो क्या अल्लाह कच्चे मुसलमानों पे अपना काम डालेगा? कच्चे मुसलमानों को अपना दीन देगा तो स्ट्रांग बनना है, और फर्म होंगे तब जब फिर दूसरों को भी मदद मिलेगी। दुनिया में इंसान की काबिलियत की बुनियाद पर उसको सिलेक्ट किया जाता है। अल्लाह सुबहान तआला बंदे को उसके जज्बों और उसकी तड़प की बुनियाद पर देखता है, इसलिए फरमाया कि फसबतू, जम जाओ, वापिस लौटने का तो सोचो ना। जुबाने जिक्रुल्लाह से तर हो, हाथ काम करें, दिमाग में मकसद वाजे हो, ऐसी कौम को फिर कोई हरा नहीं सकता कि शैतान तक मायूस होता है। अगली आयतों में एक वाक्य की तरफ इशारा है। वही ज़य्यन लहुम शैतान आमालहुम वकाल ला गालिब लकुम अल्यौम मिनन नास। जरा ख्याल करो इस वक्त का, जबकि शैतान ने इन लोगों के करतूत इनकी निगाहों में खुशनुमा बना दिखाए और इनसे कहा आज तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मगर जब दोनों गिरोहों का आमना सामना हुआ तो वो उल्टे पांव फिर गया और कहने लगा, मेरा तुम्हारा साथ नहीं चल सकता, मैं जो कुछ देख रहा हूँ वो तुम नहीं देखते, और मुझे अल्लाह से डर लगता है, और अल्लाह ताला बड़ी सख्त सजा देने वाला है। देखिए, शैतान कह रहा है मुझे अल्लाह से डर लगता है, तो अगर हम गुनाह भी करें और साथ के अल्लाह से बड़ा डर लगता है, हाय बड़ा डर लगता है, तो फिर उसमें और हमें क्या फर्क रहा? काम के वक्त पे काम न करें और जुबान से कहते हैं अल्लाह से डर लगता है, तो ये एक धोखा है। अल्लाह का डर बंदे के पांव पकड़ लेता है, जुबान पकड़ी जाती है, निगाहें झुक जाती हैं, कानों में उंगलियां दे लेता है बंदा, जुबान को हाथ में पकड़ के खींचता है कि खबरदार गलत ना बोलना। तो धोखा है ये सिर्फ इंसान का कि मुझे अल्लाह से बहुत डर लगता है। जबकि मुनाफिकीन और वह सब लोग जिनके दिलों में रोग लगा हुआ था कह रहे थे, इन लोगों को तो इनके दीन ने खब्त में मुबतला कर दिया। कई लोगों को दीन की तरफ आता देख कर लोग आज भी ये जुमला बोलते हैं, ये हफ्ती हो गई, इनको जोश चढ़ गया, ये आज सबको एक ही भूत सवार है, कुरान पढ़ना कुरान पढ़ना, देखना चंद दिन में इनका सब खत्म हो जाएगा। कहा नहीं, हालांकि अगर कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो यकीनन अल्लाह ताला बड़ा जबरदस्त और दाना है। काश तुम इस हालत को देख सकते, जबकि फरिश्ते मकतूल काफिरों की रूहें कब्ज कर रहे थे। ग़ज़वे बदर में जो काफिर मारे गए उनकी मौत का मंजर है, वो इनके चेहरों और इनके कूलों पर जरबे लगा रहे थे और कहते जाते थे, लो अब जलने की सजा भुगतो, ये वो सजा है जिसका सामान तुम्हारे अपने हाथों ने पेश की मुहैया किया। अजाब कबर की तरफ इशारा इन आयात में, वरना अल्लाह तो अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। ये मामला इनके साथ इस तरह पेश आया जिस तरह आले फिरौन और इनसे पहले के दूसरे लोगों के साथ पेश आता रहा, कि उन्होंने अल्लाह की आयात को मानने से इनकार किया और अल्लाह ने इनको इनके गुनाहों पर पकड़ लिया। अल्लाह कुव्वत रखता और सख्त सजा देने वाला। एकदम यहाँ फिरौन का जिक्र क्यों आया? मुमासलत है। बदर में जो काफिर मारे गए थे उनको बदर के कुएं में फेंक दिया गया था, पानी में गए तो फिरौन भी तो पानी में डूबा था। तो कुफर के साथ अल्लाह ताला ने दोनों को एक तरह का जोड़ के सामने रख दिया। अल्लाह कुव्वत रखता और सख्त सजा देने वाला है। ये अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक हुआ कि वो किसी नेमत को जो इसने किसी कौम को अता की हो उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपने तर्ज अमल को नहीं बदलती। हाईलाइट करेंगे आगे तो इससे भी वाज़ेह आयत आएगी इंशाल्लाह, लेकिन जहां देखिए क्या वही बात नहीं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का, और हकीकत है हम जब तक खुद नहीं बदलेंगे हमारे हालात नहीं बदलेंगे। आप कह लीजिए कि जब तक हम अपनी हालत नहीं बदलेंगे हमारे हालात नहीं बदलेंगे। आप चाहती हैं मुसलमानों के हालात बदलें तो अपनी हालत हमें बदलनी होगी। और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने और जानने वाला है। आले फिरौन और इनसे पहले की कौमों के साथ जो पेश आया वो इसी जाब्ते के मुताबिक था, उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया, तब हमने इनके गुनाहों की बादाश में इनको हलाक किया और आले फिरौन को गर्क कर दिया। ये सब जालिम लोग थे। यकीनन अल्लाह के नजदीक जमीन पर चलने वाली मखलूक में सबसे बदतर वो लोग हैं जिन्होंने हक को मानने से इनकार किया और फिर किसी तरह वो इसे कबूल करने पर तैयारी नहीं। नोट कीजिए, अल्लाह से लोगों को जानवर कह रहे हैं, खसूसन इनमें से वो लोग जिनके साथ आपने मुआहदे किए, फिर वो हर मौके पर इसको तोड़ते हैं, जरा खुदा का खौफ नहीं रखते। बस अगर ये लोग तुम्हें लड़ाई में मिल जाएं तो इनकी ऐसी खबर लो कि इसके बाद दूसरे जो लोग ऐसी रविश इख्तियार करने वाले हों इनके ख्वास बाख्ता हो जाएं। तवक्को है कि बदहदों के इस इंजाम से वो सबक लेंगे, और अगर कभी तुम्हें किसी कौम से खयानत का अंदेशा हो तो इसके मुआहदे को एलानिया फेंक दो। ठके छुपे नहीं मुआहदे तोड़ सकते। आप देखिए इस्लाम मुआहदों की, अग्रीमेंट्स की, कमिटमेंट्स की कितनी अहमियत लाता है, तो मेरे और आपके लिए भी इसमें अमल है। अगर किसी काम की कमिटमेंट की है तो निभाना होगा, तोड़नी है छोड़नी है तो उसके लिए वक्त तरीका होगा, डिसिप्लिन होगा। ये नहीं कि खड़े खड़े आप उस फैसले को करके सुना के पीछे हो जाए। फरमाया अल्लाह से खाइनों को पसंद नहीं करता, यानी खयानत करार पाएगी किसी काम की जिम्मेदारी लेना और उसको बगैर किसी नोटिस के छोड़ देना। मुनकरीन हक इस गलत फहमी में न रहे कि वो बाजी ले गए, यकीनन वो हमको हरा नहीं सकते। और तुम लोग जहां तक तुम्हारा बस चले ज्यादा से ज्यादा ताकत और तैयार बंदे रहने वाले घोड़े इनके मुकाबले में मुहैया रखो। देखिए ये है वो आयत जो मुसलमानों को सिखाती है, तुम भी हथियार लो बनाओ, जब सारे छोड़ देंगे तुम भी छोड़ दो। आज लोग अगर ये कहें कि मुसलमान हथियार ना रखें क्योंकि मुसलमान पीसफुल है, तो आप भी छोड़ दें, हम भी छोड़ देते। आप सारे दुनिया के वेपन्स को डंप कर दें तो हम अपने सबसे पहले करने को तैयार है। आप अपने एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, फुलां बॉम्ब सब खत्म कीजिए, हम आपसे पहले करने को तैयार है। दुनिया को पीसफुल लैंड बना, ये होगा नहीं कभी, ये ड्रीम लैंड है जो कभी आज तक तो ना हुआ, आगे कहाँ होगा। आपके बच्चों को यकीन हो जाए कि माँ बाप उनको कुछ नहीं कहेंगे तो वही सर पे चढ़ेंगे, ये तो डंडे का जोर होता है जो लोगों को ठीक रखता है। तो इस्लाम क्या चाहता है, असलहे की नुमाइश करो, उसका इस्तेमाल ना करो। यहाँ ये जो आप परेड देखते हैं या जो 23 अगस्त को, 23 मार्च को होता है, 23 मार्च को या 14 अगस्त को, तो उसको देखकर एकदम दिल में रोब आता है ना। तो इस्लाम बुरा नहीं कहता इसको, दुश्मनों को दिखाओ हमारे पास बॉम्ब है, नो प्रॉब्लम है, वी हैव, वी आर एटॉमिक एनर्जी, यस वाई, ताकि वो दूर रहे। इस्लाम हथियार इसलिए बनाता है कि लोग जंग ना करें, काफिर हथियार इसलिए बनाता है कि जंग करें और फिर अपने हथियारों को बेचने के लिए लड़ाता है कि अब हमारे हथियार पुराने हो रहे, इनको पकड़ो इधर से उधर मरवाओ ताकि हमारे नए हथियार बिके। ये मदीना में भी हो रहा था, ये आज भी कहीं ना कहीं हो रहा होगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम तैयारी करके रखो ताकि इसके जरिए से अल्लाह और उसके दुश्मनों को और इन दूसरे दुश्मनों को खौफ जदा करो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। अल्लाह की राह में जो कुछ तुम खर्च करोगे इसका पूरा पूरा बदल तुम्हारी ही तरफ पलटाया जाएगा और तुम्हारे साथ कोई भी जुल्म न किया जाएगा। वहीं जना बोले सलम फजना, और ए नबी अगर दुश्मन सुलह और सलामती की तरफ मायल हो तो तुम भी इनकी तरफ इमादा हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, यकीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। और अगर वो धोखे की नीयत रखते हो तो आपके लिए अल्लाह काफी है, यानी मुसलमान समझदार है। देखिए दुश्मनों तक को मौका दिया जा रहा है, क्या पता चला कि किसी दीनदार का साथ देने के लिए थोड़ी सी तहकीक कर लो, उनका मिशन समझ आ जाए, काम शुरू कर दो। अब अंदर से क्या है, बाहर क्या है, उनके मोटिव्स क्या है, वो किसको प्रमोट करें, इसकी ज्यादा फिक्र ना करो। अगर वो खयानत करेंगे उनको गुनाह होगा, आपको नहीं होगा। वही तो है जिसने अपनी मदद से मोमिनों के जरिए से तुम्हारी ताईद की और मोमिनों के दिल एक दूसरे से जोड़ दिए। तुम रुए जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर डालते तो इन लोगों के दिल जोड़ नहीं सकते थे, मगर वो अल्लाह है जिसने इन लोगों के दिल जोड़े, यकीनन वो बड़ा जबरदस्त और दाना है। ए नबी तुम्हारे लिए और तुम्हारे पैरो अहलो ईमान के लिए तो बस अल्लाह ही काफी है। हाईलाइट कीजिए इस आयत को, सारी मोहब्बतों का सिर अल्लाह के हाथ में। आप किसी के दिल में मोहब्बत डाल ही नहीं सकते जब तक वो मोहब्बत डालने वाला ना डाले। असल नाम अल्लाह का हल वदूद। हम सब बात करें अपने ऊपर, आप देखिए कि उल्फतों का मरकज जब अल्लाह होगा ना तो खुद में मोहब्बत डलेगी। जब भी कभी अल्लाह ताला से लोगों को जोड़ेंगे तो मोहब्बत होगी। सवाल पैदा होता है कि एक गिरोह के लोगों के दिलों में मोहब्बत कैसे डले। मिसाल है घर में शोहर बीवी एक को दूसरे से मोहब्बत नहीं महसूस होती, क्या किया जाए, क्या کیا آپ کو وظیفے پڑھے جائیں یا ودود کی تسبیحیں پڑھی جائیں. وظیفوں سے وہ کام نہیں ہوتا جو کچھ کاموں کے کرنے سے ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ دوسرے آپ سے محبت کریں تو آپ خود اللہ سے محبت کریں. یہ اللہ کا وعدہ ہے, جب آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں آپ کی محبت ڈالتا ہے. پھر آپ قرآن سے محبت کریں, رسول سے محبت کریں. یہ وہ میگنیٹ ہے, اللہ رسول اور اسلام اور قرآن, ان سے محبت کرنا وہ میگنیٹ ہے جو ٹیم کو جوڑے رکھتا ہے. مومن تولا جاتا ہے, گنا نہیں جاتا. آج ہم تقریباً 1.25 لاکھ بلین مسلمان ہیں, لیکن اگر آج صحابہ کو لا کے پیش کیا جائے تو 2-4 صحابہ کا ایمان ہم سے بڑھے گا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ آپس میں جڑے ہوئے تھے. ایمان کی وجہ سے محبت بڑھتی ہے, لائک مائنڈیڈ ہونے سے محبت بڑھتی ہے, سیم کاز ہونے سے محبت بڑھتی ہے. اور محبت اور الفت کے قاتل کیا ہے؟ زبان. اس کو کاٹ دیں, شکوے چھوڑ دیں, گلے چھوڑ دیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنانا چھوڑ دیں. آپ کسی کی 10 باتیں دیکھیں, اس کو اوور لک کر دیں, دعائیں دیں اس کو. جہاں کسی ساتھی کی کمی دیکھیں وہ اس کو دعا دیں. پھر آپ دیکھیں آپس میں محبت بڑھتی ہے سلام کرنے سے, تحفے دینے سے, کشادہ پیشانی سے ملنے سے, مسکرانے سے. کہیں فیل ہوتا ہے نا دوسرے ساتھی کے ساتھ کوئی کھٹ پٹ ہے, کسی کو مجھ سے یا مجھے سے کوئی چھوٹا 10, 5, 20 کا گفٹ دے دیں. آپ دیکھیے گا محبت ہاتھ تحب, یہ سب چیزیں. دعوت دے دیں, کھانا لے آئیں, کھانا پیش کر دیں, بچوں کو پکڑ لیں, کچھ لے لیں, دے لیں. کیونکہ جن کو اللہ کا دین پیارا ہوتا ہے وہ حقیقت میں الفتوں کو قائم رکھتے ہیں. الفت نکل جائے نا تو وہ ایسی ڈوری ہے, جو اتر گئی تو باقی موتی جو ہیں وہ بکھر جائیں گے. کتنی خوبصورت تسبیح کیوں نہ ہو, بیچ میں سے موتی نکال لیں, سب پاؤں میں آ جاتے ہیں لوگوں کے. پھر اسی طرح لوگوں کو اچھے مشورے دیں, اور محبتیں ختم ہوتی ہیں غیبتوں سے, تانوں سے, الزام سے. ان سب چیزوں کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ محبت آئے گی. اور ان ساری چیزوں کی آج امت مسلمہ کو بڑی ضرورت ہے. میں کہتی ہوں اللہ اس وقت وہ دائی دین اٹھا جو محبتوں کا پیغام عام کرے. کاٹنے والے, توڑنے والے, ایک کی لیگ پولنگ دوسرے کے ساتھ کرنے والے, ہم تھک گئے ان سے. انہوں نے امت کو آج کتنے ٹکڑوں میں بانٹ دیا. حق پہ رہتے ہوئے محبت کو عام کرے. محبت فاتح عالم. اس محبت سے تو آپ دیکھیں کیا کچھ جڑتا ہے. اور یاد رکھیے یہ کام عورت کرے گی. ایک ماں کی محبت میں گھر جڑا رہتا ہے. 6 بچے بھی ہیں نا, ایک ماں کے سین ساتھ جڑ کے گھر بنیں گے. ماں کٹتی ہے, ماں نکلتی ہے, ماں فوت ہوتی ہے, گھر بکھر جاتا ہے. آج بھی یہ کام عورت ہی کرے گی. کیونکہ جو نرمی اور جو معاملہ فہمی عورت کی آواز اور زبان میں بات میں ہو سکتی ہے, جو دلوں کو مولے, وہ بعض دفعہ مردوں میں نہیں ہوتی. اور سارے ایسے نہیں, اور ساری عورتیں محبتوں والی نہیں. ہر طرح کے لوگ ہیں. دعا کیجیے کہ جیسے صحابہ کے دل جڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی جوڑ دے. مقصد پہ نظر رکھے, کام کرنا ہے آپ نے, کام چھوڑنا نہیں. کسی ایک بندے کو کاٹنا نہیں ہے. میں نے کٹ جانا ہے, میں نے پیچھے ہو جانا ہے, لیکن کسی دوسرے کو نہیں لے جانا. پھر دیکھیے انشاءاللہ مسلمان امت کیسے فخر کرتی ہے اپنے اوپر. اے نبی, مومنوں کو جنگ پر ابھارو. اگر تم میں سے 20 لوگ صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب ہوں گے. ایک کتنے کے اوپر بھاری ہے؟ 20 2 پہ 100. جی ریشو دیکھیے گا. یعنی جب ایمان پختہ ہوتا ہے نا تو ایک مسلمان کے مقابلے میں اگر 100 کافر بھی آ جائیں, 20 اور 200 کا مقابلہ کریں تو 10% ہے. ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 کافر آ جائیں تو مسلمان غالب آئے گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے. کیونکہ ویسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. اچھا, اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اس کو معلوم ہے کہ بھی تم میں کمزوری ہے. بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر, اور 1000 آدمی ہو تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے. پہلے 1:10 کا ریشو تھا, اب 1:2 کا ہو گیا. کیا پتا چلا کہ دین کے کاموں میں اللہ کی مدد ایمان کے مطابق آتی ہے. صحابہ کے ایمان بڑے پختہ تھے تو نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. 313 کے مقابلے میں 1000 بھی ناکام ہو گئے. آج کس چیز کی ضرورت ہے؟ آج ایمان کم ہے, آج زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے. ایسے ہی ہے کہ جو سٹرانگ لوگ ہوتے ہیں, 2 لوگ بھی اٹھا کے بڑا ٹیبل اٹھا لیں گے, اور اگر لوگ ویک ہوں گے تو 10 لوگ لگیں گے تو ایک ٹیبل ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ہوگا. تو دین کو پھیلانے کے لیے جہاں آپس میں جڑنا لازم ہے, مسلمان مسلمان سے جڑے, ٹیم ورک کرے. اسی طرح سے دوسری بات جہاں یہ پتہ چل گئی کہ ایمان بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے, جب آگے سے تعلیم کا سلسلہ رک جاتا ہے نا تو پھر انسان دوبارہ اسی جاہلیت میں آ جاتا ہے جہاں سے چلا ہوتا ہے. تو ٹیم کے اندر جن کو کام دیا جائے, مینجمنٹ کے کام دیے جائے, ان کو پھر تعلیم بھی لینی چاہیے. بعض دفعہ कुछ लोग कहते हैं कि जब हम कुरान पढ़ते थे तो बहुत मजा आता था, अब ऑफिसेज में बैठते हैं हर वक्त मुकदमे फैसले ये है उसका दाखला उसका ये, अब हमें ऐसे लगता है हमें कुछ ईमान नहीं मिल रहा। और इट्स ट्रू, ईमान मिलता है कब, जब आप खुद इल्म के पानी से रहते हैं। इसलिए हर शख्स हमेशा तालिब इल्म रहता है चाहे वो 10 साल पढ़ चुका हो, फिर उसको पानी मिलता रहता है तो उसको अपनी खराबियां भी दिखती हैं। और हकीकत है कि दीन की गाड़ी मुख्तलिफ लोगों से मिलती है, कोई स्टेयरिंग है, कोई ब्रेक है, कोई इंजन है, व्हील्स बनेंगे और ये सब अपना अपना काम करें। और दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे कोई एक नट और एक बोल्ट ही बना ले, एक तार बना ले, बस मुझे दीन की गाड़ी में डाल दे। लेकिन ये बात हकीकत है कि दीन का काम तन्हा नहीं होता, एक अकेला 2 11 तो फरमाया अगर तुम्हारा ईमान अब कम हो गया तो 200 पर 1000 और 2000 पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ जाएंगे। और वल्लाहु मअ सबिरीन, और अल्लाह उन लोगों के, अब गज़वे बदर के कैदियों का किस्सा आया तो उसपे आयतें उतर गईं कि कैदियों के साथ क्या किया जाए। चले माले गनीमत की बाँट तो अब समझ आ गई, लेकिन कैदियों का क्या किया जाए। तो माँ का अनली नबी ये नहीं यकून लहू असरा, किसी नबी के लिए ये जेबा नहीं कि इनके पास कैदी हो जब तक कि वो जमीन में दुश्मनों को अच्छी तरह कुचल न दे। तुम लोग दुनिया के फायदे चाहते हो हालांकि अल्लाह के पेशे नजर आखरत है और अल्लाह गालिब और हकीम है। अगर अल्लाह का लिखा हुआ पहले से ना होता तो जो कुछ तुम लोगों ने लिया इसके जुर्म में तुमको बड़ी सजा दी जाती। बस जो कुछ माल तुमने हासिल किया इसको खाओ कि वो हलाल और पाक है, और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ऐ नबी, जो लोग तुम्हारे कब्जे में कैदी हैं इनसे कहो अगर अल्लाह को मालूम हो गया होता कि तुम्हारे दिलों में कुछ खैर है तो वो तुम्हें इससे बढ़ चढ़ कर देगा। हजरत अब्बास कहते हैं ये मेरे बारे में, गज़वे बदर में कैदी बन के आए थे क्योंकि मुसलमान नहीं हुए थे तो इनका फिदिया दिलवाया गया था, लेकिन बाद में फिर अल्लाह ताला ने इनको जब इस्लाम के बाद दौलत दी तो कहते हैं जितना मैंने अपने फिदिये में इस्लाम को दिया था वो सब वापस आ गया। और याद रखिए एक जनरल रूल है, इस्लाम का काम नया नया होगा ना कहीं भी, आज तो हर जगह ही नया है, पूरी दुनिया में मुसलमानों को जान माल वक्त लगाना पड़ेगा, हर एक को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा, लेकिन जरा गलबा इस्लाम का जमता है, मुसलमानों के पांव जमते हैं, सबको वापस वो मिलने लग जाता है। ये अल्लाह का वादा है, आप चाहें ना चाहें आपको खुद ब खुद मिलने लग जाएगा। असल ये कि आप माल के लिए नहीं आए, आप दुनिया के लिए नहीं आते, आप पहले अपना सब कुछ अल्लाह को दें तो फिर अल्लाह अपना सब कुछ आपको देता है, ये अल्लाह का वादा है। हम पहली शर्त चूंकि पूरी नहीं करते तो आखिरी दिन तक फिर अल्लाह के रास्तों में मजबूर और परेशान हो जाते हैं। इसलिए फरमाया ए नबी, तुम लोगों के कब्जे में जो कैदी हैं इनसे कहो अगर अल्लाह को मालूम हुआ कि तुम्हारे दिलों में कुछ खैर है तो तुम्हें इसे बढ़ चढ़ कर देगा। खैर से मुराद ये कि तुम इस्लाम कबूल करोगे, और गज़वे बदर के कैदियों में से अक्सर ने इस्लाम कबूल कर लिया था बाद में। वो तुमको वापस करेगा जो तुमसे लिया गया और तुम्हारी खताएं माफ करेगा और अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। लेकिन अगर वो आपके साथ खयानत का इरादा रखते हैं तो इससे पहले तो वो अल्लाह के साथ खयानत कर चुके, चुनाच इसी की सजा अल्लाह ने इनको दी कि वो आपके काबू में आ गए। और अल्लाह ताला सब कुछ जानता और हकीम है। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया, हाईलाइट कीजिए बेहतरीन आयतें, तदब्बुर वाली आयतें, और यही है आज के दौर का मैसेज कि हमें भी इन्हीं में से किसी एक में शामिल होना है। इन्नल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू बिअम्वालिहिम वअन्फुसिहिम फी सबीलिल्लाह, जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और हिजरत की और अल्लाह की राह में अपनी जानें लड़ाई और अपने माल खपाए, और जिन लोगों ने हिजरत करके आने वालों को जगह दी और इनकी मदद की, दरअसल वही एक दूसरे के वली हैं। ये कौन है? मक्का वाले मुहाजिर और मदीना के अंसार हैं। याद रखिए दीन के काम करने के लिए यही दो तरह के लोग हैं, कुछ घर छोड़ रहे होते हैं और कुछ आने वालों को जगह दे रहे होते हैं। या मुहाजिर बनो या अंसार बनो। मदीना की हिजरत से हमें ये बात पता चल गई कि आज भी हर मुसलमान को अपनी अपनी नेमतों को देखना है, मैं इस्लाम को क्या दे सकती हूँ। जान है तो जान लगा दें, वक्त है तो वक्त लगा दें, घर है तो घर पेश कर दें। जो घर छोड़ते हैं अगर उनको हिजरत का अजर है तो घर में जगह देने वालों को अंसार बनने का भी अजर है। वल्लज़ीना आमनू वलम युहाजिरू, अब ये तीसरा गिरोह है जो ईमान तो लाए लेकिन मक्का नहीं छोड़ा अभी, क्योंकि अभी वहां अपनी जायदादें थी। तो अगर रहे वो लोग जो ईमान तो ले आए मगर हिजरत करके दारुस्सलाम में नहीं गए तो इनसे तुम्हारा विलायत का कोई ताल्लुक नहीं। बहुत सख्त क्राइटेरियन है, हिजरत मदीना लाजिम थी। कुछ लोगों ने घरों की मोहब्बत में मक्का नहीं छोड़ा, उनको डांट पड़ गई कि आप अभी उस लेवल पे फिर नहीं हमारी लिस्टों में जिसमें हिजरत करके जाने वाले हो गए। कब तक? जब तक कि वो हिजरत ना करके आए। और कई लोगों ने फिर बाद में ऐसा ऐसा करके हिजरत कर ली थी। हाँ, अगर वह दीन के मामले में तुमसे मदद मांगे तो इनकी मदद करना तुम पर फर्ज है, लेकिन किसी ऐसी कौम के खिलाफ नहीं जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो गया। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इसको देख रहा है। जो लोग मुनकरे हक है वो एक दूसरे की हिमायत करते हैं। अगर तुम ये ना करोगे तो जमीन में फितना और फसाद बरपा होगा। यानी मुसलमान का दूसरे मुसलमान की मदद करना हर मुमकिन लाजिम है, हर मुमकिन आपको ये करना ही पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा होगा नहीं। तो जिस तरह की जरूरत है वैसे कर लो। और इसके बाद आखिरी आयतें, दुआ कीजिए अल्लाह मुझे और आपको इनका मिस्दाक बना दे। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह की राह में घर बार छोड़े और जिद्दोजहद की, ये गिरोह है। सोचिए मैं इसमें हूं। दूसरी ग्रोह की बात, जिन्होंने पनाह दी और मदद की, दैट्स इट। पूरा इस्लाम दो किस्म के लोगों से मिलके बनता है, या मुहाजिर बनो या अंसार। कल तो हिजरत हुई, मक्का छोड़ा, मदीना गए, अपना घर पेश कर दिया, अपनी जायदादें पेश की। आप सारी किस्से पढ़ते हैं सीरत में, कैसे अंसार ने अपने दिल खोल दिए, किस तरह वो अपने दिल दिमाग घर बार खोल के बैठे थे कि मक्का से आने वाले लोग हमारे घरों में आए। आज क्या किया जाए इसको समझिए। देखिए, किसी भी सोसाइटी में ना आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो है जो दीन की तरफ आ रहे हैं, नए नए न्यू लोग, पहले दिन का लेक्चर याद कर लें, जिनकी जिंदगी में अभी नया नया सफर शुरू हुआ है। एक खास सेटअप पे, रंग ढंग पे, माहौल माशरा उनको चला रहा था, वो चलते गए, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया मामला। अब वो कुरान का पैगाम सुन रहे हैं, उनको तो एक मिशन की जिंदगी लग रही है। अभी तक हमने इबादत वाली जिंदगी गुजारी थी, अब उनको लगा बात कुछ और है। अब वो बहुत खौफजदा है, उनके घर के माहौल मुवाफिक नहीं, शौहर यूज्ड टू नहीं है, बच्चे आदी नहीं है। अब वो है आज के दौर के मुहाजिर, जो गुनाहों वाली जिंदगी छोड़ के आ रहे हैं, जो रस्म और रिवाज वाली जिंदगी छोड़ के आ रहे हैं, जो दुनिया के पीछे भागने की जिंदगी छोड़ के आ रहे हैं। एक दूसरा गिरोह है जो अल्हम्दुलिल्लाह 3 4 5 साल पहले से आ चुके हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनके घर वालों ने एडमिट कर लिया कि ये इस कुरान के बगैर नहीं रहेंगी, कि इनका यही है, ये बच्चों को भी रुलाएंगी, ये मियाँ के काम भी करेंगी जो भी, लेकिन इन्होंने इधर नहीं छोड़ना। अब जम गई, घर में इज्जत बन गई, माहौल बन गया, एक्सेप्टेबल है, वो आज के अनुसार है। नए लोगों का हाथ पकड़ना पुराने लोगों का फर्ज है। जो इस्लाम में आज नया आए उसको रौनक से देखना, हूं ऐसे कपड़े पहने, हूं ऐसी हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे काम करते हैं। नहीं, आज के दौर में अगर आपने उल्फत पैदा करनी है तो इस दीन की तरफ नए आने वालों को सीने से लगाएं। किसी हाल हुलिये में आप सीने से लगाएं, क्योंकि वो बेचारा कांपता हुआ आ रहा है, हांफता हुआ आ रहा है, उसको तो खौफ आ रहा है, उसने तो पता नहीं क्या क्या बातें मीडिया से सुनी है, और वो तो कहेगा पता नहीं मेरी जान भी इज्जत भी महफूज है कि नहीं। तो आज इस वक्त जरूरत है, इसके लिए आप सब अपने ऊपर ले, अपने इर्द गिर्द देखें, आपकी दोस्त हैं साथी हैं जो माशाल्लाह दीन पे जमे हुए हैं और जो नए आ रहे हैं, आपस में मिले। इस बीरू व सा बीरू व रा भी तो यही मैसेज सूरत आल इमरान के एंड पे था, वहां गजवे उहद पे तबसरा था, इस सूरत में गजवे बदर में पड़ा। दोनों का एंड बिल्कुल एक और है कि मुसलमानों को आपस में बॉन्ड बनाना होगा, दावतें करें, घरों में बुलाएं, आप अपने बच्चों को अपने दोस्तों के बच्चों से मिलाएं, अपने शोहरों को मिलाएं अपने शोहरों से, घरों में दावतें बुलाएं, छोटा ईद पे बुलाएं, दावत करें ताकि उनको एक माहौल मिले। क्योंकि जो नया बंदा आता है वो बहुत वीक होता है, अल्लाह ताला कहता है ये दो काम कर लेंगे तो यही सच्चे लोग हैं, अल्लाह हमें सच्चा बना दे। इनके लिए खताओं से दरगुजर है और बेहतरीन रिस्क है। जो लोग बाद में ईमान लाए और हिजरत करके आ गए और तुम्हारे साथ मिलकर जिद्दोजहद करने लगे, तो वो भी तुम में शामिल है। कुछ डालें जल्दी गलती हैं, कुछ देर से गलती हैं, कुछ जल्दी इस्लाम पे अमल कर लेते हैं, कुछ देर से करते हैं, आर न दिलो। देखिए, जो बात मुझे कुरान से बार बार समझ आती है कि मुसलमान दूसरे के बारे में बदगुमान ना हो, मैं तो बहुत नेक, हम तो इतने अच्छे, तहज्जुद पढ़ती हूँ, हम तो जद्दी पुश्ती आलिम है, हम हाफिजों की औलाद है, हमारे इतने बच्चे हाफिज है, भाई अब क्यों जलाते हैं दूसरों को? दूसरों से नफरत ना करें। देखिए, मोहब्बत से दिल जीते जाते हैं। इस वक्त इस उम्मत को जितनी मोहब्बत की डोज देने की जरूरत है, क्योंकि बाहर से गालियां खाते हैं, डांट खाते हैं, हम बातें सुनते हैं, फिर आके दीनदारों से भी डांटे ही सुने तो वो फिर वो डूब जाते हैं, कहते हैं बुरे तो बन गया, बुरे बन के दिखाएंगे। तो मेरा और आपका फर्ज है अपना मुकाम पहचाने। आज घर जाके जब बैठे तो सोचे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीन में कहां खड़ी हूं, क्या मैं मुहाजिर हूं, क्या मेरा नया नया सफर है, हर चीज नहीं लग रही है, हर चीज घर में फर्क, खानदान फर्क, सहेलियां फर्क, दोस्तें फर्क, कारोबार फर्क, वो खो मैं अकेली हूं। डोंट वरी, किसी ऐसी दोस्त को ढूंढ लें जो आपसे सीनियर है, फिर उसे को मेरा हाथ पकड़ो, मुझे छोड़ना नहीं। तुम सुबह मुझे फोन कर दिया करो, मुझे घर से आके ले जाओ, मुझे डाइट दे दो, क्योंकि मैं अपने उन पे बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर एक दिन बुला ले, आप उनके उनके बडीज बन जाए। आज अगर दीनदार और बेदीन बडीज बन जाए, वल्लाह ही बात गलत लगेगी, लेकिन एक आलिम और एक शराबी अगर बडी बन जाए, कितनी तेजी से दीन दुनिया में आप सोच नहीं सकते। हमने लोगों को नफरतें दी, ये फला ये फला, और दीनदारों को हमने फतवे दे दिए अपने दीन के खिलाफ कि ये नमाज में हाथ ऊंचा नहीं करते, ये निकल गए, ये औरतें मर्दों की नमाज का फर्क करते हैं, ये निकल गए। कुछ को दीन के नाम पे काटा फिरकोवारी में, और कुछ को गुनाहों में डाल दिया। तो आज उम्मत बिखरी हुई छोटी छोटी खेतियों की सूरत में इस कटी फटी फसल को जमा करेंगे मोहब्बत के पानी से, उल्फतों के पानी से। फिर देखिए अल्लाह ताला कहते हैं, जब ये बाद वाले आए तो तुम्हारे साथ मिलकर जिद्दोजहद करने लग गए। कितना फायदा होगा ऐसे लोगों को जो दीन से दूर है, उनको प्यार से बुलाने में, कि कल वो आपकी फोर्स बनेंगे। पुराने दीन वाले थक जाते हैं, फिर उनको थोड़ा सा पीछे होना ही पड़ता है। वक्त है, जिंदगी मौत का नहीं पता, कल आप रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, नए लोगों को आगे लाएं, ताकि वो लोग आपके हाथ बने, कल किसी मजबूरी में अगर आप कहीं लुढ़के तो वो आपकी मदद करें। और ये सब कब होगा? जब दीन प्यारा होगा, इस्लाम प्यारा होगा, उम्मत बनना प्यारा होगा। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये सब ठीक है, हम अगर अल्लाह की किताब में खून के रिश्तेदार एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज को जानता है। तो यहां देखिए, हमने एक स्ट्रेच में सूरत अनफाल पढ़ी है। कोई आप में से शेयरिंग देना चाहे कि इस पूरे को सुनकर आपने क्या फील किया, हाथ खड़े कीजिए, वक्त कम है इसलिए शर्माइए नहीं, झिझके नहीं। कुछ लोग कहना चाहते हैं लेकिन झिझकते रहते हैं।
मुझे इस सबक से ये मिला कि या तो मुझे महाजिर बनना है या तो अंसार बनना है, दो चॉइस है हमारे पास, क्या बनना है तो इसके लिए रेडी हो जाए। जिसको अल्लाह ताला की मदद के लिए हमें पहले साबित कदम होना चाहिए।
साबित कदमी सीखी आपने माशाल्लाह। जब तक हम अपनी हालत नहीं बदलेंगे, हमारे हालात नहीं बदलेंगे, ठीक है। और कोई बात? इल्म हासिल करना जरूरी है। जी आपने क्या सीखा? लेग पुलिंग नहीं करनी। जी आपने क्या सीखा साथिया जी? दरगुजर करें, बर्दाश्त करें। जी आपने क्या सीखा? माल की मोहब्बत पीछे रखती है। जी शाबाश। सबर सीखा आपने इस सूरत से। जी पीछे से आप अल्लाह की पुकार पे लब्बैक कहने हैं, माशाल्लाह। जी और जो सुन रहे हैं सीख रहे हैं इस पे अमल करना है। जी अलीना आपने क्या सीखा? पेशेंस। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी इधर से जरा, यह टीम वर्क की अहमियत। जी शाबाश, कमिटमेंट करके पीछे नहीं हटना। जी शाबाश, फतह अल्लाह की तरफ से आती है। देखिए कोशिश हम करते हैं, नहीं हम थोड़े से ऑनलाइन साथियों के कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। ये कहती है फॉरगिवनेस सीखी, साबित कदमी सीखी, फिर इसी तरह मुसलमानों के दूसरों के साथ बदगुमान नहीं होना, ये भी बहुत अच्छी बात है। आज एक बहुत बड़ा फितना यकीन करे बदगुमानी है, कि क्या अल्लाह जैसी जात जिसने हर चीज को आसान दर्जे पे पैदा किया, क्या वो कोई खराब इंसान पैदा कर सकता है? देखिए ना, किसी भी कंपनी जिसकी आप बहुत ही ज्यादा गारंटी देते हैं, आप कहते हैं इनकी चीज में डिफेक्ट नहीं होता, तो क्या अल्लाह किसी इंसान को डिफेक्टेड पैदा करेगा? अल्लाह ने डिफेक्टेड नहीं किया, ये उसके हालात ने उसको बना दिया। तो दुनिया में हर बंदे के पास खैर है। कभी किसी शराब के नशे के टूटे हुए इंसान को भी आप पास जाके देखेंगे ना, उसकी आंखों में भी मोहब्बत होगी। बुरे से बुरा इंसान जिसको आप और मैं कुछ ना समझेंगे ना, उसमें भी खैर है। तो अल्लाह के बंदों से प्यार करें, इंशाल्लाह आप देखिएगा आपको अल्लाह से मोहब्बत मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ आज रुकेंगे और कल सूरत तौबा पूरी पढ़ेंगे। मैं कहती हूँ आप जिसको ला सकते हैं, सूरत तौबा इतनी खूबसूरत सूरत है कि बड़ों बड़ों को उसने तौबा करने पर माइल कर दिया। तीन लोगों की इसमें इतनी प्यारी कहानी है, और मैं कह सकती हूँ कि क्लाइमैक्स ऑफ द कुरान है। ठीक है, जज़ाकअल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
بسم الله الرحمن الرحيم
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
ساتھ جو صبر کرتے ہیں